ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल की संस्कृति और पहचान को पुनर्जीवित करना जरूरी है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। गैर आवासीय नेपालियों के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था को जल्द पूरा करने की उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने जताई प्रतिबद्धता। सुरखेत के झुपरा खोला के नजदीक हुई जीप दुर्घटना में हुई चार लोगों की मौत और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक पार्क में अंधाधुंध फायरिंग हुई कम से कम 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने बहुजातीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश नेपाल में विदेशी संस्कृति के बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सोनाम लोछार के अवसर पर काठमांडू के टूटी खेल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप को रोकना और नेपाल की राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ाकर नेपाल की राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा न देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दाहाल ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तक पहुंचने के लिए तामांग आंदोलन द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तामांग संस्कृति नेपाल की राष्ट्रीय संस्कृति की एक बड़ी कड़ी है। प्रधानमंत्री दाहाल ने कहा कि सोनाम लोछार एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। सोनाम लोछार नेपाल, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर सहित दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, जहां मंगोल चीनी सभ्यता पहुंची है। माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन आज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार सोनाम लोछार तामांग समुदाय एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान कर मनाते हैं। सुरखेत में हुए जीप हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में गाड़ी चालक दलेखी डुंगेश्वर गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के 27 वर्षीय सागर शाही, 33 वर्षीय दीपेंद्र जंग शाही और दैलेख की भगवती माई गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 31 वर्षीय बबिन शाही, गुरास गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 36 वर्षीय राजेंद्र बीसी शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुरखेत ने दी। बता दें कि छिंचू से जिला मुख्यालय वीरेंद्र नगर की ओर जा रही जीप बीती रात झुपरा खोला के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सुरखेत के झुपरा खोला में सड़क हादसे में मृत्यु हुए यात्री की मौत पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री दाहाल ने हादसे में मारे गए यात्री के प्रति सम्मान जताते हुए सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। छिंचू से वीरेंद्रनगर जा रही एक कार आज बीती रात वीरेंद्र नगर 11 झुपरा खोला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें चार यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री दाहाल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। घायल सभी का करनाली प्रदेश अस्पताल में इलाज चल रहा है। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि रेमिटेंस को व्यवस्थित करने के लिए नीतिगत और कानूनी सुधार के लिए सरकार तैयार है। प्रवासी नेपाली मंच अमेरिका द्वारा आयोजित रेमिटेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन नेपाल विषय के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि रेमिटेंस को वैधानिक चैनल से लाने और उत्पादनमूलक क्षेत्र में निवेश करने का अनुकूल वातावरण तैयार करने में आवश्यक सहयोग के लिए सरकार तैयार है। वैदेशिक निवेश और प्रविधि संबंधी आईन में गैर आवासीय नेपालियों को विदेशी नागरिक के तरह माना है। इस विषय पर गैर आवासीय नेपालियों ने ध्यानाकर्षण कराने की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने इस विषय को संबोधन करने की प्रतिबद्धता जताई। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा,
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। धनुषा के जनकपुर धाम के दो युवकों की भारत में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 के 21 वर्षीय रोहित साह और वार्ड नंबर 13 के 22 वर्षीय विष्णु साह की हत्या हुई है। ये दोनों बीते पुष 27 गते से लापता थे। लापता हुए दोनों युवक एक ही परिवार के हैं। रोहित विष्णु को भारत की सीतामढ़ी जिले में एक रिश्तेदार के घर ले गया था। पिछले सोमवार को अपहरणकर्ताओं ने एक भारतीय नंबर से विष्णु के परिवार को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांग की थी। इस बात को लेकर मार्ग 4 गते विष्णु के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। धनुषा के डीएसपी प्रदीप बहादुर क्षेत्री ने बताया कि दोनों के शव भारत के बिहार के सीतामढ़ी में खाई में दबे मिले हैं। भारतीय पुलिस ने हत्या में शामिल होने के संदेह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी क्षेत्री ने बताया कि नेपाल पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है और जांच को आगे बढ़ाया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि नेपाल में बहुत क्रांतियां हुई लेकिन अब तक देश को राजनीतिक स्थिरता नहीं मिल सकी है। मीन कुमारी राणा प्रतिष्ठान बालकोट द्वारा आज भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति यादव ने कहा कि विक्रम संवत 2007 से 17 और उसके बाद भी बहुत सी क्रांतियां हुई लेकिन देश को राजनीतिक स्थिरता नहीं दी जा सकी है और जनता को भरोसा नहीं दिलाया जा सका है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति यादव ने प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त मीन कुमारी स्मृति पुरस्कार से प्रति व्यक्ति 51,000 की राशि सहित वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुव चंद्र गौतम, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरही, प्रजातंत्र सेनानी माथवर सिंह बसनेत और वरिष्ठ बॉक्सिंग प्रशिक्षक मदन कुमार गुरुंग को सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री पदम गिरिंग ने कहा कि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तक जनता की पहुंच को सहज बनाने के लिए वे प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। प्रेस चौतारी नेपाल बांके शाखा द्वारा आज नेपालगंज में आयोजित प्रेस मीट के दौरान मंत्री गिरी ने कहा कि सभी 77 जिलों में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को प्रभावकारी तौर पर लागू करेंगे। ये बताते हुए कि वे बांके में फैले खसरा रोग की हालिया स्थिति और इस पर नियंत्रण के लिए हुए प्रयास के बारे में जानने आए हैं। मंत्री गिरी ने कहा कि खसरा पर नियंत्रण के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। पोखरा हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वालों में से 14 शवों की पहचान होना बाकी है। काठमांडू लाए गए शवों में से 14 की पहचान होना बाकी है। ये बात त्रिवन विश्वविद्यालय सेक्शन अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर गोपाल कुमार चौधरी ने बताई। उन्होंने बताया कि वे शव अधिक जले होने के कारण फॉरेंसिक विधि से पहचान करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब नेपाल प्रहरी की प्रयोगशाला में उन शवों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान करने में कम से कम 22 दिन लगेंगे। परसों 10 गते से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर साप्ताहिक रूप में शहीद दिवस मनाने की तैयारी की गई है। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा गठित शहीद दिवस मूल समारोह समिति की आज हुई बैठक ने विक्रम संवत 1997 में प्राणदंड दिए गए शहीदों को शहादत प्राप्त हुए स्थानों में मार्ग 16 गते को लैंचोर में स्मृति सभा का आयोजन कर शहीद दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी समिति की संयोजक एवं महानगर की उपप्रमुख सुनीता डंगोल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। ये गोलीबारी लॉस एंजेलिस से करीब 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित मोन्टेरी पार्क में हुई है। यहां चीनी नववर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसके चलते हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि घायलों की संख्या कितनी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल की संस्कृति और पहचान को पुनर्जीवित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन, गैर आवासीय नेपालियों के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था को जल्द पूरा करने की उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने जताई प्रतिबद्धता। सुरखेत के झुपरा खोला के नजदीक हुई जीप दुर्घटना में हुई 4 लोगों की मौत और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक पार्क में अंधाधुंध फायरिंग हुई, कम से कम 10 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।